कय चक्षुरनुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनो स्वयं रूपकटामयीहं ददान्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्चं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथमितं त्वं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च नमोऽं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो 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 महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिस्वे नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्ववानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सर्वप्रथम आज इस भागवत कक्षा में श्री श्री आदर अधिकार कृष्ण बलराम कौर नीता जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी शिला प्रभुपाद और आप सब वैष्णव से और विशेष करके परम पूज्य शिला भक्ति माधुरी गोविंद महाराज से आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि मैं शिला प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यहाँ पे कुछ में कुछ कहने का प्रयास करूँगा। तो आज हम लोग श्री भागवतम सातवें स्कंद का 15वें अध्याय का 78, 79, 80 ये सातवां स्कंद समाप्त है। दो छोटे से तात्पर्य है जो समाप्त हो रहा है तो हम इसको पढ़ेंगे। तो आप सब यहाँ पर उपस्थित है आए हैं भगवान से जुड़ने के लिए। भगवान का नाम का अभी हमने छोटा सा भजन भी गाया और ये भी जो भजन ही है जो भागवतम का श्लोक तो इसको पूरा इसको भी जो सब लोग बिना संकोच छोड़कर सुख से गान करना चाहिए। तो आप लोग भी हमारे साथ बोलिएगा। श्री सुक उवाच इति देवर्षिणा प्रोक्तम् निशम्य भरतश्रव पूजयामास सुप्रीतो कृष्णं च प्रेम विह्वलो कृष्ण पार्थमुपामन्त्रो पूजित प्रेयो मुनि श्रुत्वा कृष्णं परं ब्रह्म पार्थ परम विस्मित इति दाक्षायणीनं ते पृथक् वंश प्रकीर्तित देवासुर मनुष्याध्य लोक यत्र चरचर श्री सुकोवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा इति इस प्रकार देव ऋषिणम देवर्षि नारद द्वारा प्रोक्तम वर्णित निशम्य सुनकर भरत ऋषभ हे भरत महाराज के श्रेष्ठ वंशज महाराज युधिष्ठिर पूजयामास पूजा की सुप्रीत अत्यधिक प्रसन्न होकर कृष्णम कृष्ण की च भी प्रेम विवलम कृष्ण के प्रेम में विभोर। अनुवाद और तात्पर्य आप लोग मेरे पीछे बोलिए अनुवाद को। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा श्रेष्ठ भरतवंशी युधिष्ठिर ने नारद मुनि के वर्णन से सब कुछ जान लिया। उन उपदेशों को सुनने के बाद उन्हें अपने हृदय में अत्यंत आनंद का अनुभव हुआ और उन्होंने अत्यंत प्रेम विभोर होकर भगवान कृष्ण की पूजा की। कृष्ण तथा महाराज युधिष्ठिर द्वारा पूजे जाकर नारद मुनि उनसे विदा लेकर चले गए। युधिष्ठिर महाराज अपने ममेरे भाई कृष्ण को भगवान के रूप में सुनकर अत्यधिक चकित हुए। इस ब्रह्मांड के भीतर समस्त लोकों में सारे जड़ तथा चेतन प्राणी जिनमें देवता असुर तथा मनुष्य सम्मिलित है, महाराज दक्ष की पुत्रियों से उत्पन्न हुए। इस तरह मैं उन शबों को तथा उनके विभिन्न वंशों का वर्णन कर चुका। तात्पर्य सुनिए, 78 श्लोक का तात्पर्य है। यह स्वाभाविक है कि जब किसी को पता चल जाए कि उसके परिवार के व्यक्ति कितने महान हैं, तो यह सोचकर कि आहो ऐसा महापुरुष हमारे संबंधी है, प्रेम विभोर हो जाता है। यद्यपि पांडव पहले से श्री कृष्ण को जानते थे, किंतु जब उन्होंने नारद मुनि से सुना कि वे भगवान हैं, तो पांडवों को यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि अरे भगवान तो हमारे ममेरे भाई के रूप में हमारे साथ हैं। निश्चय ही उनका अपार हर्ष हुआ। प्रभुपाद जी का ये तात्पर्य है, भावार्थ 79 का। यदि नारद तथा युधिष्ठिर के बीच इस संवाद को सुनने के बाद भी किसी के मन में कृष्ण को भगवान होने में कोई संदेह रह जाता है, तो उसे चाहिए कि तुरंत ही अपने संदेह को समाप्त कर ले। असंशयम समग्रम्मा, बिना किसी संदेह का बिना किसी दोष के मनुष्यों को चाहिए कि कृष्ण को भगवान समझे तथा उनके ही चरण कमलों की शरण ले। सामान्य पुरुष वेदों का श्रवण करके भी ऐसा नहीं करते, किंतु यदि कोई भाग्यशाली हुआ तो जन्म जन्मांतर के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानम बालम प्रपदन्ते। तो 70-80 का इस प्रकार श्री भागवतम के सप्तम स्कंध के अंतर्गत सभ्य मनुष्यों के लिए उपदेश शीर्षक 15वें अध्याय का भक्तिवेन तात्पर्य पूर्ण हुआ। बैसाखी शुक्ल एकादशी तदनुसार 10 मई 1976 को 73 को रात में पंचतत्व मंदिर नवदीप होनोलुल में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्रीवासी गौर भक्त वृंदी कृपा से पूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद की श्री श्रीराधा राधिका रमन कृष्ण बलराम गौर नित्य जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो हम यहां पर कुछ समय से सुनते हुए आ रहे, महाराज युधिष्ठिर नारद मुनि का संवाद को महाभारत में कहा गया है कि युधिष्ठिर महाराज इतने महान थे, साक्षात धर्म की मूर्ति, उनके लिए बहुत विशेष श्लोक का उपयोग हुआ है। पुण्य श्लोक नल राजा, पुण्य श्लोक युधिष्ठिर। महाराज नल और दमयंती, जो दमयंती के पति थे नल महाराज, वो पुण्य श्लोक है, और युधिष्ठिर महाराज भी जो है पुण्य श्लोक है। तो साक्षात युधिष्ठिर महाराज धर्म की मूर्ति थे, उनमें धैर्य, दया, सत्यता के, क्षमा, दया, सत्य और धैर्य की साक्षात मूर्ति थे। हम देखते हैं कि पांडवों से भगवान श्री कृष्ण का इतना घनिष्ठ संबंध था, जैसे भगवान की अन्य सखाओं का जिस प्रकार से भगवान कृष्ण के साथ लीलाएं हुआ, जिस प्रकार से आदान प्रदान हुआ, उस प्रकार पांडवों के साथ तो हुआ ही नहीं था। बचपन में कृष्ण ऐसे नहीं कि अर्जुन के साथ है, बाल्यावस्था में ये लोग थे हस्तिनापुर में, कृष्ण थे ब्रज में, वृंदावन में। तो लेकिन एकमात्र कारण यही है कि ये जो पांडव है, पांच पांडव है, ये हमेशा धर्म के पथ में रहते थे। इस कारण से भगवान उनकी हर समय उनकी रक्षा करते थे, हर समय उनके साथ ही रहते थे। 16,108 विवाह किए, लेकिन अपने पत्नियों को छोड़कर साल में लगभग 6 महीना तक युधिष्ठिर महाराज के पास ही रहते थे, उनके कार्य में ही लगे रहते थे। उनको अभी हम सुनेंगे, उन्हें कार्य में लगे रहते थे। तो इस कारण भगवान कृष्ण हमेशा जो है युधिष्ठिर महाराज के थे। तो युधिष्ठिर महाराज एक धार्मिक, धर्मनिष्ठ राजा थे, कितने सत्यता के ऊपर जो है वो टिके रहते थे, सत्यता के आखिरी सीमा तक जो है वो तोलते थे, कहीं मेरे में कमी तो नहीं है। तब जाके भगवान कृष्ण का उनके प्रति इतना प्रेम था। जब जुआ खेला जा रहा था, युधिष्ठिर महाराज जानते थे कि ये गलत है और सब कुछ हारते जा रहे थे, इन्हें कि बीच में बंद कर दे, लेकिन अंतिम जो सब कुछ हारने के लिए राजी हो गए, चाहे कुछ भी उनके साथ जो है किया जाए, लेकिन वो पीछे नहीं हटते थे, धर्म से पीछे जो है वो हटते नहीं थे। तो इस कारण से भगवान श्री कृष्ण जो है उनके साथ सदैव रहते थे। और यहां पे हम सुन रहे हैं नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज का संवाद। आप बता सकते कि ये प्रसंग कहां पे चल रहा? राजसूय यज्ञ में ये जो चल रहा, अर्थात ये संवाद हो रहा था, इसे आपके दिल्ली क्षेत्र में ही हो रहा था, इंद्रप्रस्थ के अंदर दिल्ली में बैठे हुए युधिष्ठिर महाराज, नारद मुनि पधारे, अनेक ऋषि मुनि लोग पधारे, और बहुत जो है बड़े रूप से वहां पे यज्ञ का आयोजन हो रहा था। तो वहां पे इस संवाद की चर्चा हुआ। तो जब पांडव लोगों ने द्रौपदी से विवाह करके स्वयंवर में उनको जीते और द्रुपद राजा उनका विवाह किए, सबको पता लग गया कि पांच पांडव जीवित है, पांच पांडव जीवित है अभी भी। तो तब जो है विदुर जी कहने पर, हालांकि इसका तो कुछ इच्छा नहीं था, धृतराष्ट्र को इच्छा नहीं था, विदुर जी कहने पर और भीष्म द्रोणाचार्य सब ने कहा नहीं, आपको उनको बुलाना ही आवश्यकता, भेदभाव मत कीजिए अपने पुत्रों में या पांडु के पुत्रों में, तो नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। तो विदुर जी को भेजकर धृतराष्ट्र ने पांच पांडवों को हस्तिनापुर बुलाया, और आते ही थोड़ा सा स्वागत होने के बाद तुरंत धृतराष्ट्र ने कहा, देखो हम ये नहीं चाहते कि आप दोनों भाई वापस में लड़ाई करो, और युधिष्ठिर आप जाके अपने एक अलग राज्य बसा लो इस खांडवप्रस्थ में, इस जंगल में, दिल्ली जंगल में जो है एक अपना राज्य बसा लो। तो युधिष्ठिर महाराज तुरंत स्वीकार कर लिया, कोई संकोच नहीं था। अरे अभी अभी नव विवाहित पत्नी आई है, पांच भाई है, आप कहां जंगल में जाके कुटिया बनाए, महल बनाए, क्या बनाए। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने पूरा स्वीकार किया, सब कुछ छोड़कर युधिष्ठिर महाराज चले गए इस जंगल में आए। और यहां पर आने के बाद उन्होंने अपने पूरा जो है यहां पर अपने राज्य की स्थापित की। तो हम सुनेंगे कि आज जो हमें दिल्ली क्षेत्र दिखाई दे रहा है, आज से 5000 वर्ष पूर्व युधिष्ठिर महाराज का समय ये दिल्ली क्षेत्र कैसे था। तो जो इंद्रप्रस्थ, हालांकि इसका नाम इंद्रप्रस्थ है दिल्ली का नाम, क्योंकि ये इंद्र जो स्वर्ग में इंद्र का भवन राज्यसभा जो है उससे भी उसके बराबर का जो है ये सुंदर इंद्रप्रस्थ बना हुआ था। हालांकि इस इंद्रप्रस्थ अभी लुप्त क्यों हो गया, क्योंकि जब मैदानव ने बनाया उसने कहा था कि अगर युधिष्ठिर महाराज राज्य छोड़ देंगे तो मेरा ये भी जो 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 मैंने महल बनाया हूं ये भी जो लुप्त हो जाएगा। इसलिए जब तक युधिष्ठिर महाराज है तब तक जो है महल उनके पास अद्भुत महल था। तो राज्य था, चारों तरफ बहुत बड़े बड़े फाटक लगाए हुए थे, और चारों तरफ सबसे पहली बात है कि चारों तरफ जो है खाइयां खोदा हुआ था, समुद्र के समान खाई होता था। जैसे अभी भी आप जाते हैं आगरा वगैरह घूमने जाएंगे तो वहां जो किलाएं हैं उससे पहले जो खाइयां हैं, लाल किला भी देखिए, पहले जो खाई जो किला से पहले खाई होती थी, तो बहुत गहरे गहरे अंधेरे कुएं के समान जो खाइयां थी, और आकाश को छूने के बराबर बहुत लंबे लंबे जो है दीवारें था, बहुत सुंदर। और वो जो और नगर का जो फाटक था वो इतना सुंदर था जैसे गरुड़ जी का पंख हो। जब फाटक खुलता था ऐसे लग रहा गरुड़ जो है पंख खोल रहा है, जब फिर बंद हो जाता ऐसे लग रहा गरुड़ का मूर्ति दिखाई दे रहा था। फिर इतना ऊंचा ऊंचा महल था कि मंदराचल पर्वत के समान महल था। अभी तो ऐसे कोई जो घर भी नहीं होगा, मंदराचल के समान जो है महल था इतना था। और हर जगह गोपुरम दिखाई देता था। गोपुरम रहना बहुत शुभ कार्य होता है, घर बनाए तो गोपुरम होना चाहिए, हमारा मंदिर का जो गोपुरम है वो होना चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार का असुविधा ना हो। और वहां पर हर जगह युद्ध की स्कूल होता था, ट्रेनिंग दिया था युद्ध कैसे युद्ध जो है सीखना चाहिए, और तरह तरह का यंत्र वैज्ञानिक यंत्र जो है वो सब तैयारी हो रही थी। हर जगह ऐसे ऐसे यंत्र फिट हुआ था, अगर गलत समय कोई सैनिक आक्रमण कर गया तो तुरंत उसको जो है अटैक किया जा सकता था, और हर जगह चक्र भी लगा हुआ था। तो बड़े ही सुंदर इसका जो है, और सारा रोड बहुत ही साफ सुथरा रोड था, बहुत चौड़ा भी था, आज के समय तो चौड़ा भी रोड नहीं होगा, लेकिन युधिष्ठिर महाराज समय जो है रोड भी था, बहुत साफ सुथरा क्लीननेस और बहुत चौड़ा था। और इतना सुंदर नगर था कि हर प्रकार के फलों का वृक्ष यहां पर जो है भरा हुआ था, सभी प्रकार के फल के वृक्ष, खाली वृक्ष नहीं होता, वृक्ष में फले होता था, तो जिसको भी समय फल खाना हो वो तुरंत जो है ताजा फल मीठा फल तोड़ के जो दिल्ली में खाया जा सकता था। आजकल तो हम लोग केमिकल खाते हैं, इसीलिए हम सबको प्रयास करना चाहिए युधिष्ठिर महाराज के राज्य में रहे, एक कलयुग को छोड़े, द्वापर युग में रहे, सत्ययुग में रहे, तृतीया युग में रहे तो सुखी रहेंगे, अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। और बहुत सारे वृक्ष, सभी प्रकार के फल, हालांकि फल का वर्णन यहां नहीं करने जाऊंगा, सभी प्रकार फलों का वृक्ष था, और बहुत बड़े बड़े जो सुंदर सुंदर उद्यान थे, उद्यान कुंज लताएं थे और सभी कलरफुल पक्षियां, सभी जाति सभी जो है जातियों की पक्षी थे और आर्टिफिशियल पहाड़ था, कुछ असली भी था, जैसे कि अभी भी पहाड़ देखते ही हो दिल्ली के अंदर, कहीं कहीं पहाड़ जब बसा हुआ उसके अंदर घर बसा हुआ जैसे नारायण वगैरह सब पहाड़ी था, तो नेचुरल पहाड़ था, कुछ जो है बड़े सुंदर सुंदर आर्टिफिशियल पहाड़ भी बनाए हुए थे और झरना भी था और भरपूर मात्रा में धन भरा हुआ था, धन इतना धन भरा हुआ था कि कुबेर के समान ही युधिष्ठिर महाराज का जो धन भरा हुआ था। हालांकि क्योंकि जब तो इसमें जो है भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ हस्तिनापुर आए, हस्तिनापुर से फिर खांडवप्रस्थ में आ गए, तो भगवान श्री कृष्ण भी साथ में थे और भगवान ने सोचा अब ये लोग जंगल में कहां रहेंगे, तो भगवान ने इंद्र को याद किया, तो इंद्र आए, तो भगवान ने कहा कि हमारे पांडवों के लिए आप घर बनाइए, इंद्र को कहा, तो इंद्र ने विश्वकर्मा को कहा तुरंत जो है मेरा सभा भवन के समान यहां पे युधिष्ठिर महाराज का सभा भवन बनना चाहिए, तो करीब बहुत शीघ्र जो है इन्होंने जो है बहुत शीघ्र जो है यहां पे इंद्रप्रस्थ जो उन्होंने स्थापित कर दिए। तो इतना सुंदर नगर था, इतने सुख शांति था कि सब लोगों को पता चल गया कि युधिष्ठिर महाराज ने बड़ा सुंदर नगर बनाया, हर प्रकार का सुविधा है, सब सुख शांति से बड़े अच्छे ढंग से प्रजा का पालन करेंगे, यहां दुर्योधन तो कुछ करता ही नहीं था। तो सभी लोग जितने भी वहां पर लोग थे, सेठ साहूकार ब्राह्मण सब शिल्पिया कारीगर सभी लोग आके जो है इस इंद्रप्रस्थ में बसने लग गए। तो इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज को जो है अपना इंद्रप्रस्थ राज्य प्राप्त हुआ। तो इसी में जो है तो अब इतने धर्मी राजा थे तो नारद मुनि का उनका संवाद हो रहा, ये देखिए नारद मुनि का उनका संवाद अभी ही हुआ है, कई बार नारद मुनि आ चुके हैं, कई बार नारद मुनि आ गए कि युधिष्ठिर महाराज को गाइडेंस देने के लिए। एक बार तो जैसे इंद्रप्रस्थ में पांचों भाई बसने लगे और नवविवाहित द्रौपदी आई हुई थी, द्रौपदी तो वो किसी के गर्भ से तो प्रकट नहीं हुई, वो यज्ञ कुंड से प्रकट हुई। तो द्रौपदी इतनी सुंदर थी कि उनके शरीर से जो है कमल का सुगंध आता था, कमल का सुगंध उनके शरीर से निकलता था। तो जब पांच पांडव यहां आए तो उस समय नारद मुनि भी आके कहने लगे युधिष्ठिर देखो तुम पांच भाई में बड़े मित्रता है और एक स्त्री को लेकर भाइयों में संबंध भी जो खराब हो जाता है। एक प्राचीन कथा है, हिरण्यकश्यप के वंश में निकुम एक राजा एक असुर हुए, उनके दो पुत्र हुए सुंद और उपसुंद, दो पुत्र हुए, ये दोनों ने हिमालय में जाकर मंदराचल में जाकर ब्रह्मा जी घोर तपस्या की और उनसे वरदान मांगे कि हमारी मृत्यु कभी ना हो और हमें अमरत्व का वरदान दीजिए, हमें किसी से भय ना हो, किसी से भी हम ना मरे। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये तो असंभव है, देवताओं को भी मरना पड़ता है तो तुम लोग कैसे वरदान में दे सकता। तो उन्होंने एक उपाय कहा, एक कौन थे सुंद उपसुंद, इधर उन्होंने उपाय बताया कि ऐसे कीजिए कि हम दोनों के अलावा अगर हम दोनों एक दूसरे को मारे तभी हम मरे अन्यथा ना मरे। और दोनों में इतना प्रेम था, इतना घनिष्ठ संबंध था कि सभी लोग जानते थे कि ये जो है ये ना कभी एक दूसरे को मारेंगे ना कभी मरेंगे, इतने प्रेम, इतने एक साथ खाना एक साथ सोना एक जैसे विचार एक जैसे वस्त्र धारण करना, इतने घनिष्ठ प्रेम था इन दोनों में। तो इसमें जब इस पर हम एक दूसरे को मारेंगे नहीं, दोनों में खूब प्रेम है, कैसे मार सकते हैं? तो इन दोनों में बहुत अहंकार भर गया, ये दोनों सब जगह जाके जो सभी को परेशान करने लगे, सभी उजाड़ने लगे, सभी को मारने लगे, देवताओं को स्वर्ग से भगा दिए, सब ऋषि मुनियों को मार पीट कर उनका पूजा पाठ करना, यज्ञ करना सब बंद करवा दिए। तो इससे ऋषि मुनि बड़ा परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो इनको तो मैं वरदान दे चुका हूं, लेकिन इन दोनों में कैसे संबंध खराब होगा? तो विचार किए, तो उन्होंने एक अप्सरा का उत्पन्न किए। उस अप्सरा का नाम था तिलोत्तमा, तिलोत्तमा नामक एक अप्सरा को उत्पन्न किए। तिलोत्तमा का मतलब है कि उसका एक एक जो अंग है बहुत ही सुंदर है, तिल जो तिल तिल जो है जो बहुत जो है सुंदर जो है सुंदर, उसका नाम तिलोत्तमा है। तो ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा अप्सरा को उत्पन्न किए, तो अप्सरा ने तिलोत्तमा ने कहा कि ब्रह्मा जी मेरे लिए क्या आदेश है? तो उन्हें तुम जाओ सुंद उपसुंद के पास जाओ, उनको जो है लुभाओ और दोनों को जो है वापस में बेर हो जाए। तो वही हुआ, इतने सुंदर अप्सरा आ गई तो दोनों जो है दोनों कहने लगे भाई ये जो है ये मेरी है, मेरी है, कहने लगे। कह रहे नहीं तुम्हारे नहीं है, मेरी है, इस प्रकार से कहने लगे, तुम्हारा तो भाभी है। तो दोनों भाई तो तुम्हारा भाभी है इस तरह, इसको नहीं पहले इसका हाथ मैंने पकड़ा। इस प्रकार से लड़ाई, इस प्रकार जो आर्गुमेंट करते करते वापस में दोनों मारापीटी हुए और दोनों घमासम युद्ध हुए और एक दूसरे को जो है हरिबोल हो गया। तो एक स्त्री के कारण इतना प्रेम था दोनों भाई में, उनमें युद्ध छिड़ गया। इसी प्रकार नारद मुनि कह रहे, इसी प्रकार तुम लोग भी जो है कि द्रौपदी के कारण तुम भाइयों में कोई मनमुटाव ना हो जाए, इसके लिए नारद जी ने एक नियम बनाया। नारद जी ने नियम बनाए पांच भाइयों के कि हर भाई जो है एक एक जो साल के लिए जो है द्रौपदी के भवन में रहेंगे। तो शुभ चिंतक थे नारद मुनि, श्रुदम सर्वभूताना, नारद मुनि सबका शुभ चिंतक है। तो युधिष्ठिर महाराज पांडवों के शुभ चिंतक थे, इसलिए उनका आकर उनको उपदेश दिए हर एक भाई जो है एक एक वर्ष के लिए द्रौपदी के भवन में रहा करेंगे। अगर किसी कोई भाई अगर गलती से चला गया तो उसको 12 वर्ष के लिए वनवास होगा, 12 वर्ष के लिए वनवास होना चाहिए। तो और उसको ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए 12 वर्ष के लिए। तो ऐसे इस प्रकार से उन्होंने नियम बनाया था। तो एक दिन की बात है कि ऐसे नियम बना हुआ था, तो युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी के महल में थे, तो उसी समय एक ब्राह्मण जो है रोता हुआ आ गया राज्य में, आके खूब युधिष्ठिर महाराज को जो है बाहर खड़े होकर डांटने लगा, तुम लोग कैसे राज्य चला रहे हो, तुम लोग राज्य चलाना नहीं आता, तुम्हारे राज्य काल में मेरे गाय जो है चोरी हो गया, कुछ लुटेरों ने आके मेरे गाय चोरी करके ले गए, अगर मेरे पास गाय चला गया तो मैं ब्राह्मण का कार्य कैसे कर पाऊंगा, मैं हवन कैसे कर पाऊंगा, डांटने लगे। तो अर्जुन जब बड़ा अपमानित होकर उन्होंने जो है अब मैं क्या करूं, अगर मैं चोरों को पकड़ने के लिए जाऊंगा तो मेरे पास धनुष नहीं है, तीर नहीं है, क्योंकि सब जो है इस कमरे में रखा हुआ, युधिष्ठिर महाराज अभी अंदर है। फिर भी उन्होंने कहा कि चाहे मुझे वनवास हो जाए लेकिन मैं जरूर इस ब्राह्मण को रक्षा करने, इस गाय को रक्षा जरूर जाऊंगा। तो तुरंत गए जाकर अपने धनुष बाण उठाकर लेकर जो चले गए और उनका पीछा किया, चोरों का पीछा किया, गाय को लेकर आए। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मैं जो है नियम भंग किया हूं और मैं जा रहा हूं 12 वर्ष के लिए बन। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा नहीं, आपने ठीक किया, कोई गलत नहीं किया, क्योंकि अगर मैं महल में था, अगर उस ब्राह्मण का गाय चला जाता तो मेरा ही अपमान होता, तुमने मेरे लिए किया और मैं तुमसे कोई नाराज भी नहीं हूं। इस पर काफी उपदेश काफी कुछ बताया बताने के बाद जो है, लेकिन अर्जुन माना नहीं मैं जो है नारद मुनि का नियम को भंग नहीं कर सकता, मुझे जाना ही पड़ेगा। तो 12 वर्ष के लिए जो है अर्जुन जो है अकेले कुछ ब्राह्मणों के साथ जो है वो वन वन भ्रमण करके जो है घूमने लगे। तो उसी प्रकार बीच बीच में नारद मुनि आते थे। और भी एक बार जब ये यीशु महाराज को राज्य प्राप्त हो गया तो उस समय नारद मुनि आकर कहने लगे कि नारद मुनि ने कहा यीशु महाराज आप राज्य कैसे चला रहे हो, कैसे आपका राज्य चल रहा है। काफी सारा एक राजा का उपदेश दिए, एक राजा को किस प्रकार से चतुर होकर अपने राज्य का पालन करना चाहिए, तो एक्सेप्ट किए पूरा इन्होंने यीशु महाराज ने। और उन्होंने कहा मैं इसी समय मैं पूरा हर जगह भ्रमण करते रहता हूं, मैं स्वर्ग में गया था, वहां पे आपके पिता पांडु महाराज से मुलाकात हुआ। पांडु महाराज ने कहा आपको एक संदेश भेजा है कि युधिष्ठिर को जाकर बोलो कि स्वर्ग में जैसे दूसरे राजा लोग हरिश्चंद्र इत्यादि राजा लोग जो है जिस प्रकार से आनंद का उपभोग कर रहे हैं तो मैं भी करना चाहता हूं, और मेरे लिए युधिष्ठिर बोलो कि वो अश्वमेध यज्ञ करे। तो नारद का आदेश पे जो है नारद ने कहा आपके पिताजी ने संदेश भेजा है, तो इसके बाद युधिष्ठिर महाराज जो है अश्वमेध यज्ञ का जो है उन्होंने तैयारी करने लगे। वो अश्वमेध यज्ञ का तैयारी करने लगे तो उसी में जो है पहले सबसे पहले कैसे हुआ, सबसे पहले वहां पर भीष्म पितामह सभी लोग आए। भीष्म पितामह ने सबसे पहले वहां पर जब कृष्ण की बाल लीलाओं की चर्चा की, और उस कृष्ण की बाल लीला जब चर्चा हुई, सब लीलाओं का चर्चा हुआ, उसको देखकर सुनकर शिशुपाल जो काम गया वो सहन नहीं कर पाया, क्या इस सभा में इतने बड़े ऋषि मुनि की सभा में इस ग्वाला का चर्चा हो रहा। तो उन्होंने जो सहन नहीं किया और वहां पर सारा जो है सारा कारोबार सब कुछ वहीं पर हुआ, जिसके कि जिस प्रसंग में कि यहां पर हम पहुंचे हैं कि यहां पर जब शिशुपाल का वध हुआ, वध होने के बाद उन्होंने देखा युधिष्ठिर महाराज देखा कि कितनी आश्चर्य की बात है, जो इनसे बैर करते थे कृष्ण से जो व्यक्ति बैर करता था उसको इतना बड़ा मुक्ति प्राप्त हुआ। तो उन्होंने प्रश्न करने लगे। तो फिर जिस प्रकार सातवां स्कंद आज समाप्त हुआ है तो चला कि ये जो शिशुपाल और दंतवक्र जो ये पिछले जन्म में जय विजय थे, हिरण्यकश्यप का प्रसंग आरंभ हुआ, उसके बाद जो ये सब जो है बाकी सब वर्णाश्रम धर्म का यह चर्चा हुआ। तो इस अध्याय के प्रारंभ में युधिष्ठिर महाराज ने कहा था कि नारद मुनि आप बताइए कि मेरे जैसे एक गृहस्थ व्यक्ति गृहमेधी व्यक्ति कैसे जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, कैसे जीवन को परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूरा उपदेश नारद मुनि ने पूरा उपदेश उनको जो है दिए। तो उसी का जो यहां पर जो श्लोक है 74 गृह धर्मस्य गृहमेधी न वर्णितम पाप नाशन। हे युधिष्ठिर महाराज मैंने यहां पर जो धर्म का वर्णन किया है जो सात्विक स्कंद हमें आने वाले जो पिछले समय में हमने जो है सुना, ये धर्म को क्या है अगर गृहमेधी भी जो गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति वो भी सुनेगा तो उसका सारा पाप जो है नष्ट हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान का नाम कीर्तन करने से, भगवान के संकीर्तन भगवान कृष्ण का नाम कीर्तन करने से व्यक्ति सभी प्रकार पाप से मुक्त हो जाएगा। गृहस्थ व्यक्ति भी हो लेकिन यदि भगवान का नाम कीर्तन कर रहा है तो उसका पाप जो है नाश हो जाएगा। गृहस्थ एन पदवी मंजसा न्यासी मानियत। अगर व्यक्ति गृहस्थ भी है लेकिन तब भी जो वह सन्यासी के पद को प्राप्त कर सकता है यदि भगवान कृष्ण का नाम का संकीर्तन करता है। तो फिर इसके बाद बता रहे हमारे नारद मुनि बता रहे, यूयम लोक बत भूरि माग लोकम पुनाना मुनयो भियन्ति एसम गुहना बसती त साक्षा गुणम परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। उन भगवान का कीर्तन करने से व्यक्ति जीवन के चरम लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। वही भगवान तुम्हारे घर में येशम गृह ना बसती तो साक्षात, वही भगवान जो है आपके घर में हमेशा रहते हैं। नारद मुनि कह रहे, किससे कह रहे? युधिष्ठिर महाराज से कह रहे, वही भगवान जो आपके यहां हमेशा बसते हैं और ये इन्हीं को देखने के लिए तुम्हारे घर में बड़े बड़े इस जगत को पवित्र करने वाले ऋषि मुनि लोग तुम्हारे घर में सदा ही आया करते हैं, सदैव आते हैं इन्हीं को देखने के लिए। और यही भगवान जो है गुणम परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, इन भगवान को जाना बहुत ही जो मुश्किल है, इन भगवान को जाना बहुत ही मुश्किल है। और जो ब्रह्म है, जो परम ब्रह्म है, भगवान है, यही श्री कृष्ण है। सामने ही कृष्ण जो है बैठे हुए, उनके तरफ इशारा करते हुए नारद मुनि बता रहे। और मनुष्य लिंगम, ये जो है ये मनुष्यों की लीला आपके साथ कर रहे हैं। सवा अयम ब्रह्म महादिमृज्ञ केवल निर्माण सुखानुभूता, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग मुक्ति की कामना के लिए, सुख की कामना के लिए जो प्रयास करते हैं, वही श्री कृष्ण तुम्हारे प्रिय शुभचिंतक मामा का पुत्र और आपको आपके जो है कल्याण करने वाले और आपके सब कार्यों करने वाले और गुरु का रोल भी जो है ये निभा रहे हैं। आपके साथ रहकर कृष्ण ये सभी कार्यों को जो है तुम्हारे साथ कर रहे हैं। तुम अपने मामा का पुत्र मानते हो उसको, तुम अपने मामा का पुत्र मानते हो, तुम्हारा शुभचिंतक है जो ये सभी लोग उनको ढूंढ रहे हैं, ये सभी लोग उनको ढूंढ रहे हैं और ये तुम्हारे घर में बसे हुए हैं, वो परम ब्रह्म श्री कृष्ण। और कभी कभी गुरु का कार्य निभाते हैं, जैसे भगवत गीता उपदेश करना, युधिष्ठिर महाराज को उपदेश करना, और विधिकृत कोई भी कार्य करना हो वो खुद ही करते हैं। जब राष्ट्रीय यज्ञ में कृष्ण क्या कर रहे हैं कि सभी ऋषि मुनियों का जूता साफ कर रहे हैं, जूता रख रहे हैं, उनका पांव धो रहे हैं। ये भगवान विशेष करके सेवाओं क्यों लिया, और भी सेवा ले सकते थे, लेकिन कृष्ण ये जानते थे कि अगर ये ब्राह्मण अगर युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ में खुश हो जाएंगे तो युधिष्ठिर महाराज का निश्चित विजय होगा और उनको किसी भी प्रकार का अभाव नहीं होगा। अगर ब्राह्मण प्रसन्न हो जाए फिर कोई काम जो है असंभव नहीं है, सब संभव है। तो युधिष्ठिर महाराज के कार्य को संभव बनाने के लिए भगवान ने खास करके यह सेवा को चुन लिया। जो पहला ही जो अगर ब्राह्मणों का अगर स्वागत किया जाए, जैसे कहा जाता ना फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, तो पहला ही उन्होंने इंप्रेशन दे दिया। स्वयं तिल्लो के स्वामी लक्ष्मी के पति जो है माधव, उनका जो चरणों का चरण प्रक्षालन कर रहे हैं, इसलिए भगवान जो है उन्हें खुश करने के लिए उनका जो है कार्य कर। आत्मा अरण्य हमेशा सलाह देते, भैया ये बात नहीं है, यो बात है, ये नहीं है, वो नहीं है, हमेशा सलाह देते थे। और हमेशा वो जो कृष्ण है परम ब्रह्म है वो युधिष्ठिर महाराज का पांव छूते थे, ये मेरा बड़ा भाई है, बड़े भाई मानते हैं, पांव छूते थे। असल युधिष्ठिर महाराज होते मेरा जो है मामा का लड़का और सुहृद हमारे शुभचिंतक है। जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से वापस जा रहे थे द्वारिका के लिए, तो सबसे विदा लिए कुंती महाराणा से विदा लेने के लगे। कुंती महाराणा ने कहा कि कृष्ण तात 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 का तात मीन्स बहुत प्रिय पुत्र, आप हमें छोड़ के जा रहे हो, हम आपके ऋणी हैं, आपने हमें कितने कितने संकट में बचाया। जब लक्षागृह में हम लोग पड़े हुए थे तो आपकी कृपा से हमें हम जो है बचे। वो जानते थे कृष्ण जो है यही भगवान है, क्योंकि भविष्यवाणी हो चुका था कि भगवान जो कंस का वध करेंगे, और इसी कृष्ण ने जो है कंस का वध किए थे। कुंती जानती थी, ये फिर भी जो उनका स्नेह था और प्रिय, हमेशा प्रिय कार्य करने में लगे रहते थे। वही परम ब्रह्म जो है तुम्हारे घर में ये सब कार्य कर रहे हैं। तो कल जो गुरु कृष्ण जी ने कहा था, इसी भगवान को ना ब्रह्मा जी समझ सकते हैं, ना लक्ष्मी जी समझ सकते हैं, ना शिव जी समझ सकते हैं, इनको केवल मौन के द्वारा अल्तू फालतू की बात ना करें, ये मौन है कि दुनिया की चर्चा ना करें, ग्रामा कथा ना करें, घर की बातें ना करें, मौन रहे और भक्ति के माध्यम से भगवान को पूजा किया जाए। प्रसिद्धता में ससात्वतम पति, वह सात्वतम पति जो भक्तों के स्वामी है, उनके स्वामी है, भक्तों का पति स्वामी जो है वह हम पर प्रसन्न हो। इतना कहकर प्रणाम करके नारद मुनि उस राजस्व यज्ञ से निकल गए। तो इसको सुखदेव गोस्वामी जी, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, इति देवर्षिणा प्रोक्तम निशम्य भरतश्रव। हे भरत वंशी, भरतवंशी परीक्षित, हे भरतवंशी परीक्षित, इस प्रकार देवर्षि नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज को ये सब उपदेश देने के बाद पूजया मास सुप्रीत पृष्ठम स प्रेम विवलो, ये सब सुनकर युधिष्ठिर महाराज पूजया मास सुप्रीत बहुत जो है हृदय से भर गए, क्योंकि अभी जो हृदय से भरकर कृष्ण की पूजा करने लगे। जो राजसी यज्ञ में जो श्रेष्ठ पूजा करना था अभी तो हुआ नहीं था, क्योंकि पूजा करने जा रहे तभी शिशुपाल गाली देने लगा था, तब शिशुपाल मर गया और कृष्ण के महत्व पता भी लग गया। तो युधिष्ठिर महाराज ने तो बहुत ही प्रेम से सुप्रीत प्रीति प्रीतिपूर्वक आनंद में भरकर जो है कृष्णम च प्रेम विवल, कृष्ण की पूजा करने लगे प्रेम विवल होकर, इतने आनंद में भरकर, आनंद भर गए, प्रेम से भर गए, इस भावना से कृष्ण की पूजा की। तो भगवान कृष्ण की जब पूजा करते हैं प्रेम से, जब हमारे घर में डीटीस होते हैं उनका प्रेम से, और तो अगर पूजा करते हैं तो भगवान जो है वो असली पूजा है। और इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, कृष्ण पार्थ रूपा मंत्रो पूजयो प्रयो प्रयो मुनि। कृष्ण पार्थ, पार्थ जो है युधिष्ठिर महाराज को पार्थ कहा गया है, पार्थ प्रथा के पुत्र। कृष्ण पार्थ रूपा मंत्रो, इस प्रकार जो है इनसे जो उपदेश ग्रहण करने के बाद उनका पूजा किए, उपदेश प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि का पूजा किए। क्योंकि इतना सारा अगर आपने उपदेश सुना, सुनने के बाद अगर जो 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 आपको कृष्ण कथा कर रहे उनको कुछ आप अगर कुछ सम्मान नहीं करोगे तो क्या तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज उनको जो है पूजा किए। अब कृष्ण पूजा करने के बाद सुना युधिष्ठिर महाराज ने, कृष्ण सुत परम ब्रह्म पार्थ परम विस्मित, ये सब सुनकर सुना युधिष्ठिर महाराज ने कि जब कृष्ण जो है ये परम ब्रह्म है सुनकर बड़े ही विस्मित हुए। और इस प्रकार जो सुखदेव गोस्वामी कथा समाप्त कर रहे हैं, इति दाक्षायण नमते पृथक वंश प्रकृतित देवासुर मनुष्याद लोक यत्र चराचर। इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने सुखदेव गोस्वामी कह रहे, इस प्रकार जो दाक्षायणी का वंशज दक्ष की पुत्री दिति का वंशज, दिति के दक्ष के पुत्रियों से सारा चराचर जगत जो है भरा हुआ है, तो उसी के वंश में जो है, वंश की जो है कथा मैंने आपको विस्तार से सुनाया। और इस प्रकार जैसे हमने सुना था कि भागवतम जो है जो प्रारंभ हुआ था, तो दिति वंश का वर्णन किए, दिति ने क्या किया था, 49 मरुतों को जो जन्म दिया, 49 मरुतों को जन्म दिया, तो वो इंद्र का सुहृद बन गए, इंद्रलोक चले गए। तो उन्होंने उसी पे जो है परीक्षित महाराज का प्रश्न था, तो नारद और युधिष्ठिर संवाद को उन्होंने रिलेट किए थे। इस प्रकार जो इसमें भागवतम का 7वां स्कंद आज समाप्त हुआ। इसको भी श्रील प्रभुपाद जी जो है नया नवदीप में श्री पंचतत्व की कृपा से इस भागवतम के 7वें स्कंद को का तात्पर्य को अनुवाद को पूर्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है आप लोगों का? आज कथा ही कथा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री आधाराधिकारण भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराश भागवतम की, युधिष्ठिर नारद संवाद की, सभ्य मनुष्यों की, पिताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।